पिछले अध्याय में आपने देखा कि जय कोर्ट में अपनी बुआ के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करता है। इस अध्याय में जय कोर्ट में अपनी बात कहता है और फिर वो रोने लगता है, जिससे आर्यन और सानवी की आंखें भर आती हैं। जज फैसला सुनाने से पहले थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देते हैं। विक्रांत के वकील आर्यन के खिलाफ तस्वीरें पेश करते हैं जो उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और बच्चे की परवरिश के लिए उसे अयोग्य बताते हैं। बहस के बाद जज जय के कस्टडी जेसिका को सौंप देता है। आर्यन और सानवी जय को जाते हुए देखते हैं। सानवी रिया के पास अपने फ्लैट में बेहद परेशान बैठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जमीन में समा जाऊं, मुझे बेहद शर्म आ रही थी, सानवी बोलते हुए रो पड़ी। तभी कृति फ्लैट में दाखिल हुई। सानवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता ये सब किसकी वजह से हुआ है। आ गई तुम, एक बच्चे की जिंदगी से खेल लिया तुमने, अब भागकर कहाँ जाओगी? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? सानवी का गुस्सा साफ छलक रहा था। कृति ने नीचे नजरें झुकाईं। दीदी, पता है मुझे कि मुझसे गलती हुई है, मुझे बेहद पछतावा है, मगर अब मैं क्या करूं, जो हो गया सो हो गया, उसने लापरवाही से कहा। सानवी ने रिया की तरफ देखा, फिर बोली, देखा ना रिया, ये लड़की कैसी बात कर रही है, कितने लोगों की जिंदगी में तूफान लाकर अब आराम से बैठी है, इसे जरा सा भी शर्म नहीं। कृति बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। सानवी उसके पीछे पहुंची और दरवाजा खोलते हुए बोली, तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना इस बात से भागना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वजह से कोई कितनी परेशानी में है, तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि तुमने क्या किया, तुम बहुत सेल्फिश हो, कृति ने गुस्से में जवाब दिया। आप मुझे अकेले को खुदगर्ज नहीं कह सकती दीदी, और वैसे भी आप हकीकत नहीं बदल सकती, जो होना था वो हो गया, सानवी ने गुस्से में कहा। मुझे लगा था तुम्हें पछतावा होगा, तुम सुधर जाओगी, मगर तुम्हारा बात करने का तरीका बता रहा है कि तुम नहीं बदली, तुम ऐसी क्यों हो कृति? कृति की आंखों में आंसू थे पर आवाज अब भी ठंडी थी। मगर सारी गलती मेरी भी नहीं है दीदी, जो आपकी और आर्यन की तस्वीरें उन्होंने पेश की उनमें मेरा कोई हाथ नहीं था, आप खुद उनके साथ गई थी, तो हर बात की गलती मेरी कैसे हो सकती है? सानवी ने हैरानी से कहा। तो अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी, अपनी गलती से निकलने का यही तरीका है तुम्हारा, कृति धीरे धीरे शांत होती हुई बोली। देखो दीदी, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, मुझे बस पैसों की जरूरत थी, इसलिए गलती हो गई, अब सच में पछतावा है मुझे। सानवी चुप हो गई, उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और बेबसी एक साथ झलक रहे थे। सानवी अचानक खड़ी हो गई। मुझे ही सही करना होगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मैं जा रही हूँ, सब बता दूंगी, ये कहकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रिया ने चौंक कर पूछा, किसे बताओगी? आर्यन को, सानवी ने उत्तर दिया और बिना रुके बोली, अब और छुपाना नहीं है, मैं अपने कमरे से जा रही हूँ। वो अपने कमरे में पहुंचकर जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट और थकान दोनों थी। वो जानती थी कि अब सच्चाई बताने का वक्त आ गया है, कृति की वजह से जो हुआ उसे अब और नहीं छुपाया जा सकता था। तभी कृति पीछे पीछे आ गई। दीदी प्लीज मत जाइए, अगर आपने सब बता दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है, अब दोबारा ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी, प्लीज। सानवी ने उसके आंसू भरे चेहरे की तरफ देखा और बोली, बात कर ही आऊंगी कृति, तुम्हें भी समझना चाहिए कि जब इंसान एक गलती करता है तो वो और गहराई में फंसता जाता है, सच्चाई से भागने से कुछ नहीं होगा। वो अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की ओर बढ़ी। अब सबको सच जानना चाहिए, उसने धीमे स्वर में कहा। तभी रिया ने उसे रोकने की कोशिश की। सानवी जरा सोचो, आर्यन से ये सब कहना इतना आसान नहीं होगा। सानवी ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूंगी रिया, लेकिन मेरे मन पर बहुत बड़ा बोझ है, अब अगर मैं सच्चाई बता दूंगी तो चाहे जो हो मेरा मन हल्का हो जाएगा, उन्हें जो करना हो करें पर अब झूठ नहीं। रिया चुप रही। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, सिर्फ सानवी की सांसों की आवाज और उसके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, सेंटर टेबल पर 3 ग्लास रखे थे, विस्की की हल्की खुशबू हवा में घुली थी। आर्यन सोफे पर चुपचाप बैठा था, हाथ में ग्लास, निगाहें कहीं दूर दीवार पर टिकी हुई। अयान ने कहा, भाई तू जितना सोचता जाएगा उतना खुद को ही जलाएगा, थोड़ा शांत हो जा। अब वेद ने ग्लास में बर्फ डालते हुए जोड़ा, सही कह रहा यार अयान, देख अब जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, कोर्ट में अपील करेंगे और जो सच है वो सामने आएगा, आर्यन ने बिना ऊपर देखे धीरे से कहा। सच? हाँ, सच ही तो सबको चाहिए, पर कभी कभी सच बताने वाला ही गुनहगार बन जाता है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अयान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए माहौल बदलने की कोशिश की, यार जब से तू इतना सीरियस हुआ है लगता है कॉलेज वाला आर्यन कहीं गायब हो गया, याद है जब सारा कॉलेज तेरी बहसों से गूंजता था? आर्यन की आंखों में हल्की मुस्कान आई। हाँ, तब जिंदगी आसान थी, ना केस थे ना साजिशें, वेद ने कंधे पर हाथ रखकर कहा। भाई तू अभी भी वही आर्यन है, फर्क बस इतना है कि अब मैदान बड़ा हो गया है और हम दोनों तेरे साथ हैं हमेशा, अयान ने टोस्ट करते हुए ग्लास उठाया। तो फिर सच के लिए और अपने यार के लिए, तीनों ने ग्लास टकराए। बर्फ के टुकड़े टकराने की आवाज के साथ माहौल थोड़ा हल्का हुआ, कमरे का माहौल अब थोड़ा हल्का हो चुका था। तीनों, आर्यन, वेद और अयान सोफे पर फैले बैठे थे। वेद ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा। भाई अब ये बता, वो लड़की कौन थी? आर्यन ने हल्के से भौहें चढ़ाई। कौन लड़की? अयान ने तुरंत बीच में कहा। अब नाटक मत कर यार, नेहा को तो हम दोनों जानते थे, लेकिन आज जो तेरे साथ उन तस्वीरों में थी। आर्यन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बर्फ के टुकड़े को ग्लास में घुमाते हुए बोला। सानवी, अयान और वेद ने एक साथ कहा। सानवी, वेद ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तो अब नाम भी आ गया। वाह आर्यन, हमें तो लगा तू सीरियस लोगों में से है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। सीरियस हूँ, लेकिन दिल तो मेरे पास भी है दोस्त। अयान जो थोड़ी देर पहले तक गुस्से में था, अचानक मुस्कुराने लगा। अरे वाह, ये मुस्कान तो बड़े दिनों बाद देखी है। तो ये सानवी नाम है उस मुस्कान के पीछे। वेद जोर से हंस पड़ा। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, चल भाई अब हमें भी जल्दी से भाभी जी से मिलवा दे। आर्यन ने ग्लास रख दिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। पहले प्रपोज तो कर लूँ, वेद ने नाटकीय अंदाज में कहा। क्या अभी तक प्रपोज भी नहीं किया? अयान हंसते हुए बोला। भाई फिर तो टाइम आ गया है, इतना सोचने से कुछ नहीं होता। वो मुस्कान जो तू छुपा नहीं पा रहा, वही सबसे बड़ा जवाब है। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका। रात की हवा में ठंडक थी, पर उसके चेहरे पर एक गर्माहट थी, जैसे किसी के ख्याल ने उसके दिल को छू लिया हो। वेद ने ग्लास उठाया। तो फिर अगला को सानवी के नाम। सानवी बाथरूम से बाहर आई। उसने नाइट सूट पहन रखा था, बाल थोड़े गीले थे और चेहरे पर थकान साफ छलक रही थी। रिया अब भी कमरे में बैठी थी, उसकी आंखों में चिंता थी। सानवी ने धीमी आवाज में कहा। मैं जा रही हूँ, सब सच बता दूंगी, अब जो होगा हो जाए। रिया ने घबराकर पूछा। इतनी रात में? सानवी रुक जा सुबह तक। सानवी ने सिर हिलाया। नहीं रिया, अब नहीं रुक सकती, मेरा मन बहुत भारी है। जब तक सब साफ नहीं कहूंगी, चैन नहीं मिलेगा। चाहे मुझे काम से निकाल दें या कृति को, कम से कम मुझे अपने दिल में शांति तो मिलेगी। रिया चुप रही। वो जानती थी सानवी के चेहरे पर जो दृढ़ता है उसे कोई नहीं रोक सकता।
सानवी ने जल्दी से बैग उठाया, बालों को बांधा और बाहर निकल पड़ी। फ्लैट के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सड़कें सुनसान थीं, बस स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसने एक ऑटो रोका, ऑटो चल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था, पर उसके अंदर तूफान। सानवी की आंखें बार बार भीग रही थीं, पर अब उसके कदम नहीं रुक रहे थे। वो खुद से कह रही थी, अब छूट नहीं, जो भी होगा सच के साथ होगा। वहां कुछ समय पहले तक हंसी गूंज रही थी। अयान और वेद अब जा चुके थे। टेबल पर खाली गिलास, खुले स्नैक्स पैकेट और हल्की सी शराब की खुशबू बाकी थी।